चलें जी, अब हम इंशाअल्लाह ताला देखते हैं इन आयात को। आगे का जो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है वो तो हम सूरतुल कसस में भी इंशाअल्लाह देखेंगे इसी तरह, बहुत बल्कि इससे भी ज़्यादा तफसील के साथ। यहाँ पे शुरू करते हैं पहला पोर्शन जो हम सूरह ताहा का हमने कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए था, पहले उस पोर्शन को देखते हैं। और जिसको सुन के याद रखिएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम सॉरी उमर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम ले आए थे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه طه یہ حروف مقطعات ہیں۔ بعض جگہ پہ یہ آیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، مگر اس کی ایز سچ کوئی بہت ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہاں بس یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اور قوم تھی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کی زبان میں طہٰ کا معنی تھا یا حبیبی، یعنی یا میرے محبوب۔ تو مگر یہ ایک رائے ہے، زیادہ صحابہ اور مفسرین کا یہی ان کا موقف ہے کہ حروف مقطعات کا معنی ہم نہیں جانتے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن آپ پر مشقت کے لیے نازل نہیں کیا۔ میں نے آپ کو بتایا دو معنی اس کی ہیں، ایک ایک کر کے دونوں ہم معنی دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کا لفظ جو ہے اس کا روٹ جو ہے بعض یہ کہتے ہیں قرآہ سے نکلا ہے، قرآن جیسے رحمان ہے سبحان ہے، تو یہ یعنی بہت ایگزیجوریشن کے لیے نا، یعنی بہت زیادہ پڑھی جانے والا کلام، جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یا جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنا پڑھا جانا چاہیے۔ اس کا نام ہی بتاتا ہے آپ کو اور نام ہی آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھنا ہے، تبھی اس کے ساتھ مسلسل آپ کا ایک کنیکشن رہے گا، ادروائز کنیکشن نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اب ہم جب ایسا سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں دنیا میں بار بار لوگ پڑھ رہے ہوں گے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی یہ ریمائنڈر ہے نا کہ ہم نے بار بار پڑھنا ہے، ہم نے ساری زندگی پڑھنا ہے، صرف کورس کی حد تک نہیں پڑھنا، صرف سرٹیفکیٹ لینے نہیں پڑھنا۔ دوسرا میں نے آپ کو کیا بتایا، ایک لفظ کے ایک سے زیادہ بھی روٹس ہو سکتے ہیں، اور جب ایک سے زیادہ روٹس ہوں گے تو ہم ہر ایک روٹ کے طور پہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا معنی اس کا بنتا ہے، اور سارے روٹس کے سے جو اس کا معنی بنے گا ہم سبھی لے سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا روٹ قرآن اگر ہم کریں قاف را نون، تو اس کا معنی ہوتا ہے جوائن کرنا، ملانا، جیسے قرین بھی ساتھی ہے۔ اب ساتھی بھی ساتھ رہتا ہے نا ہمیشہ، جو بہت زیادہ ساتھ لگا رہے ہر وقت۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ساتھ ساتھ رہے انسان کے، اور ناٹ اونلی فزیکلی کہ میں ہر وقت اپنے پرس میں رکھوں گی تو بس میرے ساتھ ہے، بلکہ زندگی میں بھی ساتھ ہو، کسی کے ساتھ مسلسل میری زندگی میں، یعنی قرآن کا دخل رہے، قرآن کا ساتھ رہے، پریکٹیکلی جب میں زندگی گزاروں تو اس کے مطابق چل رہی ہوں۔ اور فزیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو ویسے بھی کہ ہم کچھ کچھ دیر بعد قرآن کھول لیں، کچھ کچھ دیر بعد قرآن کھول لیں، کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ ہمارا قرآن کے بغیر ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ ہم نے اس کو قرین بھی بنانا ہے اور اس کو قرآن سے بہت زیادہ بھی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے سٹریس ڈالنے کے لیے تو نہیں اتارا، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کی زندگی مشکل ہو جائے، آپ کی زندگی ٹربل میں پڑ جائے، اس لیے نہیں اتارا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر پوری پوری رات نماز میں پڑھے ہوئے اس قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے نبی، آپ اپنے اوپر اتنی مشقت نہ ڈالیں، اس کے لیے تھوڑی یہ قرآن آپ کے لیے اترا ہے کہ آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ اور اس کی اس آیت کے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات کے اول حصے میں سو جایا کرتے تھے، پھر آدھی رات کو یا ون تھرڈ نائٹ جب رہ جاتی تھی تو اٹھتے تھے اور عبادت کرتے تھے فجر تک۔ تو یہ ایک اس کا معنی ہو گیا۔ پھر میں نے آپ کو جیسے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کافروں نے کہ یہ تو بڑی مشکل میں پڑ گئے، انہوں نے تو جب سے ہمارا دین چھوڑا دیکھو ان کی حالت کیا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی یہ فرمایا۔ और हम ये भी देखते हैं इसके अंदर, जब हम देखें कि शीन काफ काफ से इसका रूट अगर लेके हम देखें तो फिर क्या माना होता है, शीन काफ या से, सॉरी, शिकावत यानी ना नाकामी ना मुरादी। तो यानी ये कुरान आपके लिए ये नाकामी ना मुरादी के लिए नहीं है, यानी ये कुरान ऐसा है कि इस मिशन में आपको नाकामी का सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी हालात अगर ऐसे लग भी रहे हैं तो जल्दी अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। तो ये दोनों माने इसके अंदर से हमने देख लिए। अब आप देखें कि हम जब कुरान करीम को लेते हैं तो हम किस तरह से लेते हैं, क्या हम भी इसको ऐसे लेते हैं कि कुरान हमने शुरू किया तो हमें ऐसे लगे कि हमारे लिए एक रहमत है? क्योंकि मैंने आपको बताया इस सूरत का एक जो थीम या एक सेंटेंस में इसको बताया जाए तो क्या है कि ये दीन ये एक नेमत है, ये एक रहमत है, जहमत नहीं है, ये मुशक्कत नहीं है, ये मुसीबत नहीं है। तो क्या जब हम भी कुरान करीम की तरफ आते हैं तो क्या हम भी इसको इस तरह सोचते हैं कि ये मेरी जिंदगी तंग नहीं करने के लिए आया, ये मुश्किलों में डालने के लिए नहीं आया? या ये सोच के आते हैं कि हाय अगर कुरान पढ़ने शुरू हो गई ना तो फिर क्या होगा, मेरी तो जिंदगी पता नहीं क्या हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, कुरान करीम जब जिंदगी में आता है ना तो जिंदगी को में बरकत ले आता है, जिंदगी के अंदर परेशानियों को दूर कर देता है, ऐसी तसल्ली देता है, ऐसा दिल पे मरहम रखता है, सिर्फ आखरत की फलाह नहीं देता, दुनिया की भी फलाह का रास्ता है ये खुशबख्ती का रास्ता है, इसमें बदबख्ती नहीं है, इसमें शकावत नहीं है। ये कुरान इसलिए नहीं आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या आपके उम्मतियों को मुश्किल में डाल दे कि हाय हमें ये कुरान पढ़ना पड़ गया, हाय हमें ये कुरान, नहीं, ये ऐसी मुसीबत की चीज नहीं है कि जैसे हम करते हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए हमें जो हमारे रवैये हैं कुरान की तरफ, बल्कि इस पर चलने से तो तुम्हें दुनिया और आखिरत की भलाइयां मिल जाएंगी, क्योंकि तुम्हें जीना आ जाएगा, तुम्हें ये पता चलेगा कि जीना कैसे है, हमें तो ये ही नहीं पता कि जीना कैसे है। तो ये तो, और फिर आखिरत में तो आपको पता ही है ये वहां पे इंसान के हक में उसकी सिफारिश करेगा जिसने इसको लेकर जिंदगी गुजारी होगी। तो ये तो बड़ी खुशबख्ती की चीज है, जिसने इसको साथ लिया उसने दुनिया की भी सआदतें पाई और आखिरत की भी। और आप देख लें थ्रू आउट जो कौमें जो जिन जिन जमानों में मुसलमानों ने इस कुरान को लेकर अपनी जिंदगियों में इसको शामिल करके चले हैं तो फिर उन्होंने दुनिया पे भी हुकूमतें की हैं, और कैसे उनके इंसाफ की कहानियां आज तक मशहूर है। तो यानी ये कुरान मुशक्कत की चीज़ नहीं, तो आज से आपने इसको मुशक्कत नहीं समझना, इसको अपने लिए मुसीबत नहीं समझना, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको इसलिए नहीं उतारा। और फिर ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि यहाँ शकाक का लफ्ज़ जो होता है ना वो थकावट के लिए भी आता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा एहसास होता था इस चीज़ का, इतने ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर इस्तराब में भी रहते थे, और इसमें के लोग नहीं मान रहे, अपने आप को थका डाला था, अपने अपने आप को मुशक्कत में डाल दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये इसमें भी आपकी तसल्ली के लिए है कि नहीं आप इतना ज़्यादा ना अपने आप को इसके अंदर मुशक्कत में डालें, क्योंकि जिसको हिदायत देनी है अल्लाह ने देनी है, आपका काम क्या है, सिर्फ पहुंचा देना। लेकिन ये वो चीज़ थी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बार बार कुरान करीम में तसल्लियाँ दी, मगर आपका शिद्दत एहसास इतना ज़्यादा था ना कि मुझे पहुंचाना है और ये लोग मान जाएं, क्यों नहीं मानते? देखिए एक इंसान ने अगर देखा हो कि अंजाम क्या है इस चीज़ का, और वो आग और उस दिन के हिसाब और अगली ज़िंदगी के बारे में ऐसे ही हो जैसे कुछ झांक के आया उसको, तो उसकी क्या कैफियत होगी जब वो लोगों को देखेगा कि ये नहीं मान रहे। कहीं मेरे चचा नहीं मान रहे, कहीं मेरे दोस्त नहीं मान रहे, कहीं मेरे रिश्तेदार और नहीं मान रहे, कहीं यानी एक माशरा है जो सारे का सारा एक आग की तरफ बढ़ रहा है। जो सेंसिटिव होगा ना वो तो उसकी तो कैफियत ही अलग होगी ना, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने इस तनाव में रहते थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये तसल्ली आ गई कि इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुश्किल में पड़ जाएं, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, ये तो इसलिए नाजिल हुआ है कि आप कोई ये नसीहत बने उसके लिए जो डरता हो। अल्लाह ताला ने इस किताब को किस मकसद के लिए नाजिल किया है कि इसमें नसीहत हो, इसमें याद दहानी हो, इसमें बार बार जिक्र हो, रिमाइंडर्स हो उनके लिए, हर एक के लिए नहीं। इसीलिए हम कहते हैं ना कुरान पढ़ते हैं और ऐसे करते हैं, कुरान पढ़ते हैं ऐसे करते हैं, जी कुरान उसी के लिए जिक्र है जो इंसान लिमई यख्शा, जो डरता है, जो डर डर के जिंदगी गुजारता है, जो कहता है कि ला मुझसे कोई कोई गलती ना हो जाए, कोई ला मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए, मुझे इसका जवाब देना है। वो जब कलाम इलाही की तरफ आता है ना तो वो उसको अपने अंदर समेट लेता है, वो इसको जजब करता है, इसलिए कि उसको खौफ है, उसको डर है, उसके अंदर खशियत है। अब ये जो हम कहते हैं ना कि हमें कुरान से बड़ी मोहब्बत है, हम अच्छे बनना चाहते हैं ये, मगर फिर क्यों नहीं जिंदगियां बदलती? इसलिए कि खशियत में कमी है, अल्लाह का डर वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए। या तो हम समझ के बैठे हैं कि बस हम मतलब बिल्कुल जन्नती हैं और हमारे जेबों में टिकट पड़े हुए हैं जन्नत के, तो मरते ही जैसे कि हमने सीधे वहीं पे चले जाना, या और कोई खाम ख्यालियाँ। तो जिस छोर डरने वाला है वो तो इस कुरान से बड़ा बड़ी नसीहत लेता है, और जितना ही ज्यादा खशियत आती जाएगी उतना ही ज्यादा तस्किरा होगा, उतना ही ज्यादा ये रिमाइंडर बनेगा, उतनी ही ज्यादा याद दहानी होगी, उतनी ही ज्यादा नसीहत होगी। समझ रहे हैं? यानी ये कॉन्स्टेंट ही, तस्किरा का मतलब मैंने कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है, ये सबको नहीं ना रिमाइंड कराता। इसीलिए तो कई लोग हैं कुरान की मजलिसों में बैठ के भी उसके बाद उठते हैं वो वैसे के वैसे ही, दिल की ना कोई हालत बदली ना कुछ है। और ये जो खशियत है, जब खशियत आ जाएगी तब असर करेगा, तब ये जज़्ब होगा, तो उसको लेने वाले कम होते हैं ना फिर। और यहाँ पे देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ तसल्ली दी गई वहाँ ये बता दिया गया कि किस मकसद के लिए ये कुरान आया, किस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। क्या हमारे लिए भी ये कांस्टेंट रिमाइंडर बनता है या नहीं बन रहा? और नहीं बन रहा तो इसका मतलब है हमें खशियत में इजाफा करना है। और खशियत में इजाफा कैसे करेंगे आप? क्या तरीका कार है इसका? कैसे अब कोई इसकी रेमेडी है, कोई तरीका कार है? जी इल्म के जरिए, जितना जितना आपके अंदर इल्म आता जाएगा अल्लाह की खशियत बढ़ती। और खशियत का मतलब सिर्फ डर खौफ ऐसा नहीं है, किसी की अजमत की वजह से जो उसका डर होता है ना, मसलन है कि जैसे आपके कोई बहुत बड़े बुजुर्ग हो तो आप उन कोई किसी कभी होता है दादा किसी के घर में और कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो जब वो आते हैं तो ये नहीं कि कोई उदाना हस्ता कोई खौफनाक है उसकी वजह से उनको से डर है, बल्कि उनकी अजमत का एहसास, वो बड़े हैं उस वजह से, जो इंसान के ऊपर एक रोब उनका होता है और एक खौफ सा दिल में होता है कि वो आए हैं यहाँ पे हमारे घर, तो वो जो होती है ना वो खशियत होती है। ठीक है, तो ये जिसके अंदर अल्लाह की अजमत का इतना एहसास हो कि वो उसको डरा दे, उसके लिए ये रिमाइंडर है। तो ये अब अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम में फरमाया है एक बात के, बल्कि हदीस में है, इसको काटने के कुरान करीम में हदीस में है ये बात कि जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ बूझ अता फरमाते हैं। राइट, तो दीन की जब समझ आने लगती है और इंसान के अंदर अल्लाह की खशियत आने लगती है तो फिर कुरान भी असर करने लगता है। और जब कुरान असर करने लगता है तो जिंदगी बदलने लगती। इट्स अ होल प्रोसेस। एक और हदीस में आता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जब अल्लाह ताला बंदों के आमाल का फ़ैसला करने के लिए अपनी कुर्सी पर तशरीफ़ फरमाएगा तो उलमा से फरमा देगा कि मैंने अपना इल्म और हिकमत तुम्हारे सीनों में सिर्फ इसीलिए रखा था कि मैं तुम्हारी मग़फ़िरत करना चाहता था, बावजूद उन ख़ताओं के जो तुमसे सरज़द हूँ, और मुझे कोई परवाह नहीं। है ना, दालिका लिमन यख्शा, यानी ये उलमा जो है ना वही हैं जो जो यहाँ पे जिसमें लिमन यख्शा आया, उलमा ही हैं जो वाकई खशियत इलाही सबसे ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उनके पास इल्म ज़्यादा है। और जिन में ये खशियत नहीं है, अरे इल्म नहीं है, इल्म ही नहीं हासिल करेंगे आप, ना खशियत आएगी, ना अल्लाह का खौफ आएगा, ना कोई डर है, ना कुछ है, बस ऐसे ही जिंदगियां गुजार के चले जाएंगे दुनिया से। उनको पता ही नहीं, जब जिसका पता ही ना हो फिर क्या खौफ या क्या उसका दबदबा होगा। तंजीलन, तंजील ये नाजिल करता है किसकी तरफ से, ये किसकी तरफ से उतारा गया, वो जो अल्लाह ताला का तारुफ क्या कराया गया यहाँ पे, मिम्मन खलकल अर्द वस्समावातिल उला, वो जिसने पैदा किया जमीन को और आसमानों को जो बुलंद हैं, जो आसमान बुलंद हैं उनको पैदा किया, यानी इंसान को दिखाया जिस जमीन पे है इंसान तू चल रहा है ना, और जिस नजर उठा के देख जिस आसमान को वो ऊपर बुलंदी पे तू देख रहा है, जिसने इनको पैदा किया है उसने ये कुरान उतारा, यानी वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। और ये कुरान भी फिर मामूली नहीं है, जिस कुरान को हम इतनी कम अहमियत देते हैं कि अपनी तमाम जो काम हैं और मसरूफियात हैं उनके बाद हमने एक, जब हम कभी ज़िंदगी में हमें टाइम मिलेगा, हम फारिग होंगे, तब हम कुरान की तरफ आएंगे, तो याद रखना ये एक कुछ छोटी सी बात नहीं है, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, छोटा सा इल्म नहीं है कि मर्जी होगी तो पढ़े, फ़र्ज़ तो नहीं है ना पढ़ना कुरान, फ़र्ज़ तो नहीं है ना समझना, कहाँ पे लिखा है फ़र्ज़। कितनी इसके अंदर अल्लाह ताला की अजमत की बात है, देखो ज़मीन की तरफ देखो और अब नज़र उठाओ आसमान की तरफ, वो बुलंद आसमान जो तुम्हें नज़र आता है, ये जो वो हद्दे निगाह तक आपको आसमान ही आसमान नज़र आता है, हद्दे निगाह तक आपको ज़मीन ही ज़मीन नज़र आती, जिसने इनको पैदा किया ना उसने इस कुरान को उतारा है, ये बताने के लिए कि वो हस्ती कौन है जिसने इसको उतारा, और ये कुरान क्या चीज़ है जो तुम्हारे पास आई है। आप देखें कि कोई छोटा सा ही कोई किसी ने किताब लिखी हो, छोटे छोटे इंसान होते हैं लेकिन वो अपने आप को जब समझते हैं कि हम बड़े कामयाब हो गए तो वो किताब लिखते हैं, किताब आके इतनी बिकती है जी, फलां की किताब है, या चले अब आपको किताबों का तो इतना रहा नहीं, वो फलां का एल्बम आया है, फलां गाने वाला है उसका यह है, लोग धड़ाधड़ खरीदते हैं और वो कहते हैं। तो खुद सोचें कि इंसानों की बोली भी बातें और इंसानों के कलाम को कितनी अहमियत दी जाती है, और वो जो रब्बे कायनात है उसका कलाम, उसकी कोई अहमियत नहीं है, और हम उसके लिए वो टाइम निकालें कि जो सबसे फालतू हो। हम दुनिया के मामले में कितने परफेक्शनिस्ट हैं ना, आप देखें एक एक दुकान पे घंटों लगा देते हैं, भावताल हो रहा है, नापतोल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर यहाँ नापतोल करेंगे कोई चीज़ का तो तब भी कितना हम बैठ बैठ के सर खपाते हैं अपना, अपने मुल्कों में, बाज़ारों में, और कितनी कितनी देर, यहाँ पे भी मॉल्स में कितनी, एक चीज़ नहीं पसंद आई, दूसरी, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, ये नहीं अच्छी, इससे बढ़ के हो, ये नहीं इससे बढ़ के हो, हम यानी हर चीज़ में हम एक सूट ही आपने लेना हो ना या एक जूता ही लेना हो कितने घंटों लगा देते हैं। लेकिन जहाँ पे कुरान सीखने का मामला, समझने का मामला, ये इतना भारी कलाम है, अगर पहाड़ों पे उतार दिया जाता तो वो चिकना चूर हो जाते, इतनी अजमत है इस कुरान की। लेकिन इसको पढ़ने के लिए और इसको सीखने के लिए हमारा ये हाल है कि हम कहते हैं बाहर पर घड़ी देखते हैं कितनी देर रह गई, जल्दी ख़त्म हो, बस जल्दी वो करें, सर से उतारने वाले, दूसरे कामों में इतनी परफेक्शन और इसमें कोई नहीं। बच्चा अगर आपका कोई अच्छे बड़े कॉलेज में है, एक दिन आप उसको छुट्टी नहीं करवाते, कहते हैं कि नहीं छुट्टी कर ली तो समझ कहाँ से आएगी, ईद वाले दिन भी नहीं छुट्टी कराते स्कूल से कॉलेज से, कहते ना फिर इसका मिस हो जाएगा इसका लेसन। दुनिया के लिए कितनी कमिटमेंट है हमारी, और कुरान के लिए कमिटमेंट का ये हाल है कि यानी महीनों महीनों गायब रहेंगे और सोचेंगे कि नहीं कुछ नहीं होता, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसी से पता चलता है ना हमारे दिलों के अंदर, चाहे हम जुबानों से कुछ भी बोलें, हमारे दिलों में इस कुरान की अहमियत क्या है, इसका स्टेटस क्या है, किस जगह पे हमने इसको रखा हुआ है। हालांकि देखें अगर आप सोचें तो ना ये कपड़े हमारे मीज़ानों में तुलने हैं, ना जूते तुलने हैं, ना ये चीज़ें तुलनी हैं। जो तुलेगा उसके लिए कोशिश नहीं, और जिसने यहीं रह जाना उसके लिए इतनी कोशिश है। तो सोचो तो सही कि ये कलाम है किसका। अब हम सिर्फ इतनी बात ही सोचे ना तो दिल पे हैबत एक तारी हो जाती है, अल्लाह की का कलाम है। ऐसे ही तो नहीं है, इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस कलाम को उठाते थे पढ़ने के लिए तो रो पड़ते थे, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, ये फरमाते जाते थे। फरमाया अर्रहमान, अर्रहमान है वो, अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान, ये उसकी रहमत ही है कि उसने ये कलाम तुम्हारे लिए उतारा। अलल अर्श इस्तवा, जो कहाँ है, अर्श पे है। अब अर्श कितना बड़ा है, अर्श पे वो कैसे मुस्तवी है, हम कुछ नहीं जानते और ना ही हमें इस बारे में कोई बात मुंह से निकालनी चाहिए। इमाम मालिक ने फरमाया था अर्श पे मुस्तवी है ये तो पता है, मगर कैसे है ये नहीं पता। बस हमारा इतना ही ईमान है, क्योंकि हमारी अक्ल नहीं समझ सकती ना, तो इसलिए इसको यहीं छोड़ देना चाहिए, जो चीज़ हमारी अक्ल से बियॉन्ड है उसको छोड़ दें। तो रहमान कौन है जो अर्श पे मुस्तवी है, और अर्श का पे मुस्तवी होना तो नहीं हम जानते, मगर इतनी बात हम कह सकते हैं कि जो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं, या जो उसके इर्द गिर्द हर वक्त जो फरिश्ते हैं मौजूद, तो जो उठाने वाले फरिश्तों हैं उनके बारे में हदीस में आता है कि एक एक जो फरिश्ता है उसके कान की ये लौ है ना, इससे कंधे तक का फासला इतना है, 700 ईयर्स तक कोई इंसान चलता रहे चलता रहे चलता रहे, 700 साल, खैर उतनी तो जिंदगी भी नहीं होती हमारी, लेकिन 700 साल की भी किसी को जिंदगी मिल जाए, उतना चलता रहे दौड़ता रहे भागता रहे, जितना फासला वो इतने में तय करेगा उतना ही सिर्फ डिस्टेंस है उसकी कान की लौ से कंधे तक। अब हमारा देखें अपना डिस्टेंस देखें, ये तो मेरे ख्याल एक बालिश्त से भी कम होगा, और वो फरिश्ता सोचेंगे कितना बड़ा होगा जिसका ये डिस्टेंस सिर्फ इतना। अल्लाहु अकबर। और लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत थरा, उसी के लिए है जो आसमानों में और जो जमीन में और जो उनके दरमियान और जो तहत थरा में, यानी आपने पहले जमीन से ऊपर की तरफ देखा था, अब सोचो कि लहू, ल का जो अल्फाबेट है ना, एक अल्फाबेट है, लेकिन इस ल में क्या आ जाता है, मिल्कियत भी आ जाती है कि वो मालिक है उसका, ठीक है, लामे तालील भी होता है यानी किस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, तो उसकी वजह से हैं आसमान और जमीन कायम और जो इनके दरमियान है और जो तहत सरार है, और लामे इस्तेहकाक भी होता है यानी उसी का हक है जो भी आसमानों में और जमीन में और जो इनके दरमियान है, किसी और का हक नहीं है इस पे। अल्लाह हू अकबर। अब जब आप आसमानों की तरफ देखेंगे कि जो भी इसमें है, کتنی طرح کی مخلوق ہے اس میں ہم نہیں جانتے، ہم نے تو ایک فرشتوں کا بتایا گیا تو ہمیں ان کا ہی پتہ ہے. اب اس کے علاوہ اب نیچے آؤ جو درمیان میں آ گیا، آسمان اور زمین کے درمیان میں کیا کیا ہے، کتنے کتنے سیارے ستارے، کیا کیا چیزیں ہیں، کچھ نہیں پتا ہمیں. چند ایک چیزوں کا پتہ چلا اب سائنس میں، بس وہ بھی سب اسی کا ہے. پھر سوچو یہ زمین، یہ بھی اس کی ہے، اور جو اس کے اندر ہے وہ بھی اس کا ہے. کیا کیا چیزیں ہیں، ان کی لسٹ بنانے لگیں تو پھر ہم تھک جائیں گے، ہم چیزیں نہیں کاؤنٹ ہو سکتی جو زمین پہ. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر زمین سے بھی نیچے چلے جاؤ تحت الثرا میں، اور جب تحت الثرا میں جاؤ گے تو وہ زمین کی گہرائی میں جتنے آئلز ہیں اور کوئی منرلز اور کوئی پانی اور کوئی لاوا اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ بھی سب اسی کا. اللہ اکبر. تو یہ سب اسی کے لیے ہے، ملکیت اسی کی ہے، اسی کا حق ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کی نظر جہاں تک جا رہی ہے وہ سب اسی کا، اوپر بھی نظر گئی وہ بھی سب اس کا، نیچے آئی تب بھی سب اس کا. اب انسان جائے تو جائے کہاں، اس کی کائنات میں سے نکل کے کہیں جا نہیں سکتا. جاؤ پھر جا کے وہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں کرو اور اس کے قوانین کو توڑو، جس جگہ پہ رب کی ملکیت نہ ہو، جس کے ملک میں رہتے ہو اس کے ملک میں رہ کے کیسے نافرمانی کر سکتے ہو. بالکل سمپل بات ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں اس کے لاز فالو کرتے ہیں نا. جب وہ آپ کو کہتے ہیں یہ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہونا ہے، گرین پہ چلنا ہے، آپ نے نہیں، آپ سے ہم نے گرین پہ چلا کرنا، ریڈ پہ ہم نے گرین پہ نہیں چلا کرنا، ریڈ پہ چلا کرنا ہے، آپ سے ہم یہ قانون بنا رہے ہیں، کوئی سمجھے گا آپ کی بات کو؟ نہیں، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمیں یہی گرین کلر ہمیں زیادہ نہیں پسند، ہمیں ریڈ زیادہ پسند ہے، ہم اس پہ چلا کریں گے. ایسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کہتے ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہیں کے قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے. وہ آپ کو کہیں آپ ایئرپورٹ پہ جائیں جوتے اتاریں، آپ کو اتارنے، وہ آپ کو کہیں آپ پاسپورٹ دکھائیں، آپ کو دکھانا ہے، وہ آپ کو کہیں کہ نہیں آپ نے یہاں سے یہ روڈ بند ہے، آپ نے یہاں سے نہیں جانا، آپ نے نہیں جانا، آپ وہ کہیں آپ کو لائنیں آپ کو بنانی ہوں گی، یہی ہمارا قانون ہے، آپ کو وہ کرنا ہوگا. جو جس جگہ کے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا، یہ تو ہر ایک کی عقل کہتی ہے کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں جس لینڈ پہ رہتے ہیں وہاں کے جو قوانین، اللہ اس کے واللہ کے قوانین سے ٹکراتے ہوں، لیکن آپ وہاں کے قوانین فالو کرتے. لیکن آپ سوچیں، امیجن کریں کہ پوری کائنات کا جو مالک ہے، اب اوپر دیکھو نیچے دیکھو، اپنے پیروں کے نیچے دیکھو یا سر کے اوپر دیکھ لو یا ارد گرد دیکھ لو، ہر طرف اس کی ملکیت ہے، ایوری ویئر. اور ہم کہیں کہ نہیں، ہم اس کے باغی ہیں، ہم نے نہیں ماننا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے جو انسان اپنے منہ سے نکالے. آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے تو ذرا باہر کہیں کہ ہم نہیں یہاں کا قانون مانتے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. نہیں نہیں، کیوں کہیں گے، ہم تو ڈرتے ہیں. اللہ اکبر، تم 6 فٹ کے انسان سے ڈرتے ہو، یہاں کی جیلوں سے ڈرتے ہو، یہاں پہ قانون توڑنے سے ڈرتے ہو، یہاں کی عدالتوں سے ڈرتے ہو، اللہ کی عدالت سے بھی نہیں ڈرتے، اس کی قید سے بھی نہیں ڈرتے، اس کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے، اس کے فرشتوں سے بھی نہیں ڈرتے. سبحان اللہ. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن اسی لیے قرآن نصیحت نہیں کرتا نا، یہ باہر باہر ہی رہ جاتا ہے، زندگیوں میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ خوف ہی نہیں ہے اندر، ڈر ہی نہیں ہے اندر. جب ڈر ہوگا نا اندر، یہ ڈر آ جائے گا کہ سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو جائے، اس وقت اخلاق بھی سنوریں گے، معاملات بھی سنوریں گے، اس کے بعد کاروبار بھی سنوریں گے، ہمارے گھر بھی سنوریں گے. اور جب وہ زمین ہی نہیں ہے جس کے اوپر نصیحت کا پانی پڑے تو کوئی اثر ہو، تو پھر کہاں سے پھول پھل اگیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن تھا. کبھی ہم ذرا بیٹھ کے لسٹ بنائیں ضرور کہ کہاں کہاں ابھی مجھے دل میں یہ آتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں میں نے ماننی اللہ کی، کہاں کہاں آتا ہے. اور اللہ وہ ہے اس سے بھی بڑھ کے بات. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اور اگر تم اونچی آواز میں بات کرو, اونچا بولو, لاؤڈلی, اوپنلی بولو, فَإِنَّهُ يَعْلَمُ, تو بے شک وہ جانتا ہے, السر وَأَخْفَى, وہ تو راز کو اور اس سے بھی زیادہ خفیہ بات کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ, تم اونچی بولو یا تم آہستہ بولو, ہر جگہ پہ سن رہا ہے. کفار مکہ کی طرف بھی اگر ہم بات اس چیز کو لے کر جائیں, تو تم لوگ جو باتیں بول رہے ہو, تم سوچتے ہو کہ اللہ کو نہیں پتا چل رہا, اللہ تعالی کو تو وہ باتیں بھی پتا ہیں جو تم سر, مطلب جو سرگوشیاں کر رہے ہو, جو آہستہ 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 کسی کو ایک طرف لے جا کے کانوں کے اندر باتیں ہو رہی ہیں, یہ اثر ہے. اور جو اندر ہی اندر دل میں باتیں ہو رہی ہیں وہ اخفا ہے. ٹھیک ہے, اچھا دوسری بھی ایک اس کی انٹرپریٹیشن, ایک ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ جو بڑی خاموشی سے الگ ہو کے کان میں آپ بات کر رہے ہیں, کوئی بھی نہیں سنتا ہے, لیکن آپ سن رہے ہیں, مطلب دوسرا سن رہا ہے, صرف وہ اور آپ کو پتا ہے, وہ سیر ہو گئی. اور اخوا کیا ہو گئی, جو کوئی انسان نہیں سنتا, کہیں پہ بھی نہیں سن رہے, صرف آپ اپنے اندر سن رہے ہیں, آپ کے اپنے دل میں ہو رہی ہیں, آپ نے سینے میں دفن کی ہیں. لیکن تحت ثرا کی بات آئی تھی, تو تحت ثرا سے بھی ایک زیادہ چھپی ہوئی چیز ہے, زمین کی گہرائیوں کو کھود کے نکالو گے, دلوں کو کھود کے کہاں سے نکالیں گے, میں اگر بتانا چاہوں آپ کے دل میں کیا نہیں بتا سکتی. زمین کھود کے پتہ چل سکتا ہے اندر کیا ہے, مگر کیا دل کھول کے پتہ چل سکتا ہے کیا ہے؟ مگر ان دلوں کے اندر تک بھی حکومت کس کی ہے اور رسائی کس کی, کس کی ریچ میں ہے وہ؟ اللہ کی. اچھا ایک تو میں نے یہ آپ کو معنی بتا دیا, دوسرا معنی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, اور وہ یہ ہے, سبحان اللہ, کہ سر وہ ہے جو کہ انسان بڑی خاموشی کے ساتھ اندر اپنے دل کے اندر باتیں کرتا ہے, اندر ہی اندر وہ سوچ رہا ہے, اندر ہی اندر باتیں کر رہا ہے, اندر ہی اندر خیالات بن رہا ہے. اور اخفا کیا ہے, اللہ اکبر, جو ابھی تم نے سوچا بھی نہیں ہے, ابھی کچھ عرصے میں سوچو گے, کبھی سوچو گے, کل سوچو گے, یا آج ایک گھنٹے بعد سوچو گے, ابھی تمہیں خود بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا سوچنا ہے, میرے دل میں کیا خیال آئے گا. جیسے آپ کہتے ہیں آئے میرے دل میں بیٹھے بیٹھے ابھی خیال آیا کہ میں فلاں چیز کھاؤں, تو ایک گھنٹہ پہلے تو آیا ہی نہیں تھا. اب آپ کو ایک گھنٹہ پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ کے دل میں گھنٹے بعد یہ خیال آئے گا, مگر اللہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں یہ خیال آنا. وہ سوچ جو تمہارے اندر اٹھی ہے نا, وہ جو بات دل میں آئی ہے, جس پہ تم اب سوچ رہے ہو, اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ تم نے یہ اب جا کے سوچنا ہے. اللہ اکبر, جس کا تمہیں خود نہیں پتا, دل ہمارا ہے ہمیں نہیں پتا, اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا ہے کیا تم نے بولنا ہے اور کیا تم نے سوچنا ہے. اللہ اکبر, جس کے پہرے سوچوں تک میں بھی ہوں, تو کیا کوئی عمل اس سے چوکے گا؟ کیا کوئی عمل اس سے اس کی نظر سے نگلیکٹ ہو سکتا ہے, ریکارڈ سے رہ سکتا ہے؟ اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے جس کی ریچ یہاں تک ہے. ہم جب باتیں کرتے ہیں تو سوچ رہے ہیں کون سن رہا ہے, سوچو وہ سن رہا ہے جو تمہارے دل کے اندر تک کے خیالوں کو سن رہا ہے. تو جب انسان دل میں بھی سوچے نا باتیں, تو اس سے بھی کوئی ایسی بات آئے, تو اس وقت بھی شرما جائیں کہ کوئی نہیں جانتا میرے دل میں یہ خیال آ رہے ہیں اور یہ سوچیں میرے دل میں اٹھ رہی ہیں اور میں ان باتوں کو سوچ رہا ہوں. کبھی کبھی انسان کسی کو بتانے سے بھی شرماتا ہے کہ میرے دل میں کیا خیال آئے, لوگ کیا سوچیں گے, لیکن اللہ سے نہیں شرماتا کہ میں اس وقت جو سوچ رہی ہوں کسی اور کو نہیں پتا. اللہ کو تو پتا ہے. جب انسان سب سے شرماتا ہے اور چھپ کے جا کے کوئی چیز کرتا ہے, چھپ کے جا کے, اتنا چھپ کے کہ کسی کو بھی نہیں پتا, پردے ڈال لیتا ہے, لاک کر لیتا ہے, کھڑکیاں بند کر لیتا ہے, دروازے بند کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے تو نے مجھے لوگوں سے بھی زیادہ کم تر سمجھا, کہ ان سے پردہ کر لیا, ان سے تو شرما گیا کہ وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھے, تجھے مجھ سے اتنی بھی شرم نہ آئی. اللہ اکبر, वो रब तुम्हारी इतनी अंदर के राजों को, इतनी अंदर की बातों को जानते हैं। हम तो एक्सपोज्ड हैं अल्लाह के सामने, बिल्कुल पता ना, आप एक्सपोज हो गए, आपके राज एक्सपोज हो गए, आपके कितना इससे डरते हैं हम, आए हमारी राज की बातें ना किसी को पता चले, वो रब सब जानता है। इसीलिए तो जब उसकी अदालत में खड़े होना होगा तो वो क्या दिन होगा कि इंसान ये जानता है मेरी एक एक सोच पे जिसका पहरा है, मैं उसके सामने खड़ा हुआ, एक एक सोच पे नजर उठना तो बड़ी, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। हम सोचते हैं मेरी नजर उठी और मैंने वो चीज देखी जो मेरे साथ बैठे हुए बंदे को नहीं पता कि मैं क्या देख रही, और मैं सोचती हूँ कि थोड़ी किसी को पता चला है मैंने क्या देखा। नजर तो फिर भी एक ऑब्वियस चीज है, वो तो ख्याल तक को जानता है। अल्लाह ताला हमारी सोचों तक में हमें पाक कर दे, हमारी सोचों तक को पाक कर दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, वो अल्लाह वो है कि जिसके सिवा कोई फिर इलाह नहीं है। ये है रब का तारुफ, ये है वो रब जिसने कुरान उतारा, ये इस रब का कलाम तुम पढ़ रहे हो। हम देखें, हमारा हाल ये है कि अगर इसी वक्त आप सारी क्लास सामने मेरे बैठी हो तो रवैये, बैठने का तरीका और पढ़ने का तरीका और सुनने का तरीका सब फर्क होता है जब सामने बैठे होते हैं, टीचर सामने है। जब घरों में बैठे हैं तो कोई परवाह नहीं, कोई कुछ नहीं, उस वक्त ये नहीं सोचते कि टीचर तो नहीं देख रही, अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो देख रहा है। ये एहसास कहाँ चला जाता है जिस वक्त, जिस दिन हमें ये आ गया ना हर एक चीज में कि अल्लाह तो देख रहा है ना, अपने आप को खुद ही कह लिया करें अल्लाह तो देख रहा है, उस दिन है वो तकवा जो मकसूद है, तब हम मुत्तकी बनेंगे। जब तक ये चीज भूल जाती है तो तकवा नहीं आया अभी। अल्लाह ताला हमें अपना एहसास हर वक्त दे दे, हर वक्त। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को जो है ना, वो यहाँ पे कहा गया ला इलाहा इल्ला हुआ, वही बात है, अल्लाह नहीं कोई इलाह सिवाय उसके, अल्लाह वो इलाह है कि जिसके सिवा किसी की इबादत नहीं। अब यहाँ पे ला इलाहा का इल्लल्लाह का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसको एक बस एक कलमा है और इसको पढ़ लिया और हमने बस जन्नत की चाबी है, ठीक है जन्नत की चाबी है, मगर जब हम कह देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो ये पूरी जिंदगी को हमारे एनकम्पस कर लेता है, पूरी जिंदगी को अपनी यानी लपेट में ले लेता है। इसका मतलब क्या है, सिवाय अल्लाह के कोई हक नहीं है, सिवाय अल्लाह की बात की कोई हक नहीं, इसके बताए हुए तरीके की सेवा कोई तरीका हक नहीं, इसके बताए हुए बताई हुई जो जिंदगी है लाइफस्टाइल है उसके अलावा कोई लाइफस्टाइल नहीं, यानी सब चीजों को आपने पीछे कर दिया। जब आप इस कलमे को ले लेते हैं ना तो इंसान की तो सोचें ही बदल जाती हैं, वे ऑफ थिंकिंग बदल जाता है। क्या बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीहात तो होती हैं लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह भी दिल में नहीं उतरा, इसको भी सीखने की जरूरत है। ये ईमान बिल्ला जो है ना, हम सोचते हैं कि नहीं अब वो बस ला इलाहा इल्लल्लाह हम तो कब से ही पढ़ रहे हैं, आता है मुझे, ये सबको आता है, क्या सीखना है इसके अंदर कि ये कलमा दिल में उतर जाए, दिल में, और इतनी पुख्ता हो जाए दिल में, इतनी अपनी जगह बना ले दिल में कि ला इलाहा इल्लल्लाह के सिवा नहीं कुछ नजर आए। इबादत का दर्जा किसी को देना ना बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है, और जब हर एक की नफी कर दी और एक अल्लाह को ये हक दे दिया तो ये और भी बड़ी बात हो गई। क्यों ये दिया अल्लाह को सिर्फ हक और किसी के लिए ये हक नहीं है, क्यों, इसके ऊपर बोलें क्यों, जितना कुछ बोल सकते हैं, क्या वाकई हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं, क्यों हमने ये हक अल्लाह को सिर्फ दिया हुआ? अपने आप को बताया करें, इससे ईमान का रिवाइवल होगा। देखें, इससे बार बार देखिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनू, ए ईमान वालों ईमान ले आओ। वो क्या ईमान लेकर आए, तो पहले से ईमान वाले नहीं। बार बार ईमान की रिवाइवल की, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। बार बार अपने आप को ये चीज, ये सबक दोहराने की जरूरत होती है। ये सबक शैतान बड़ी जल्दी इस पे हमले करता है। बाज दफा सिर्फ अल्फाज रह जाते हैं, ईमान तो जाता ही रहता है। तो इसलिए ये सीखें, ये सीखना है हमने। और इसमें अल्लाह ताला की तमाम सिफात, जात और सिफात के साथ उसके ऊपर ईमान लाना। लहुल अस्माउल हुस्ना, तमाम अच्छे नाम उसके लिए। और ये अच्छे नाम कौन से हैं? ये अच्छे नाम वो नहीं है जो मैं और आप रख लें। अल्लाह का कोई नाम हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने अल्लाह का नाम रख दिया अल्लाह मियाँ। नहीं, मैं और आप कौन होते हैं मियाँ नाम रखने के लिए? वो हमें अच्छा लगता है ना, हम रिस्पेक्ट के लिए बड़े मियाँ कह देते हैं, मियाँ ये कह देते हैं, मियाँ जी कह देते हैं, तो इसलिए हम अल्लाह को भी अल्लाह मियाँ कह देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं ऐसे कह सकते। अच्छे नाम सारे उसके हैं, और अल्लाह तुझे ही पता है कि कौन से नाम तेरी शान के मुताबिक है। हम क्या जाने कि क्या नाम तेरी शान के मुताबिक है? ये तो छोटे छोटे मामूली, पता नहीं जो हम इंसानों के लिए बोलते हैं वही अल्लाह के लिए लगा दिए। नहीं, तेरी तो शान बुलंद, और वो नाम जो तूने अपने लिए खुद बताए, कहीं अजीज, कहीं बसीर, कहीं हकीम, कहीं अल्लाह, कहीं रहमान, कहीं रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के 99 नाम है, जो अहसाहा, जो इनको सिर्फ गिन ले का मतलब इनका अहाता कर ले, जिसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि इनको याद कर ले। तो अब मैंने 99 नाम खुद भी याद कर लिया, बच्चों को भी करा दिए, चलो जी काम हो गया। तो फरमा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुशखबरी दी है कि वो जन्नत में दाखिल होगा, तो चलो हमारा तो काम बन गया। ये बात नहीं है, अहसाहा का मतलब ये है सिर्फ याद करना, याद करना भी हो गया, लेकिन उनकी पूरी समझ, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, उनके जरिए दुआएं करना, जिंदगी उन्हीं के मुताबिक गुजारना। जब हम देखें कि अल्लाह बसीर है, तो बसीर होता रहे, हमें क्या, हमें तो नहीं ना देख रहा, ये नहीं है। फिर जब देखें आलीम है, जब हम देखें कि यालमुस्सिर व अख्फा, तो हम ये महसूस करें। जब हम उसकी सिफाती नाम, ये सारी उसकी सिफात है, और रहमान है, और वो रहीम है, और वो गफूर है, और वो रज़ाक है, और वो जितनी उसकी सिफाती नाम है सब की हमें अच्छी तरह इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब उसके लिए वो खुशखबरी है कि वो जन्नत में दाखिल होगा। अब हम रज़ाक अल्लाह को कहते रहे और उसके बाद हम कहें मेरी तो कंपनी है जो हमारी राज़िक है, अब वो कंपनी हमसे नाराज़ हो गई तो फिर क्या होगा? ये जॉब ना मिली तो फिर क्या होगा? हमें अपना मुसलमान होना बता दिया तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी? तो राज़िक क्या कंपनी थी कि अल्लाह था? रज़ाक होने पे तो आपने बिलीव नहीं रखा। तो ये इस चीज़ को समझना चाहिए कि अस्माए हुस्ना क्या है, अच्छे अच्छे अल्लाह के नाम क्या है, और उस जो उसके नाम है, जैसे अल्लाह सुबहाना हुआ ताला, अल्लाह ताला कहें वो सही है, वो कुरान में भी आता है, लेकिन अल्लाह मियाँ ना कहा करें, अच्छे नाम दें, और वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट पोर्शन। अब यहाँ तक का वो आयात आ गई जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सुनी थी। अब नेक्स्ट जो हम पोर्शन देख रहे हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो हम देखते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा यहाँ पर क्यों बताया गया? असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चैलेंजेस दरपेश थे वहाँ पर, जो उनको फ़ेस करने पड़ रहे थे, इतने ज़्यादा मुश्किल थे, इतना ज़्यादा मुश्किल वक्त था, तो अल्लाह ताला ने जो सिमिलर हालात जिन पैगंबरों के गुज़रे हैं उनको ज़्यादातर पेश किया है। और आप देखते हैं कुरान करीम में मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सबसे ज़्यादा है, यानी उनके हालात बहुत ज़्यादा सिमिलर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात के। अगर उनके ज़माने में फ़िरौन था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी अबू जहल फ़िरौन था। آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اگر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ سٹرگل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقین کے ساتھ سٹرگل کی. اگر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ اتنی مخالفتیں اور اتنا بہت ہی, یعنی آپ امیجن کریں اس بات کو کہ کیسا وہ بادشاہ ہوگا جس کے دل میں اتنا بھی رحم نہیں کہ بیبیز کو دیکھ کے, تو دشمن کا بھی بیبی ہو انسان کو رحم آ جاتا ہے, چھوٹے بیبیز نیو بورنز کو جو ذبح کرا سکتا ہو, سوچے کہ اس کی کیا ظلم کی اور اس کے اندر کوئی رحم کا نام ہو سکتا ہے. ایسے آدمی کو فیس کرنا تھا موسیٰ علیہ السلام نے, اور وہ بھی پھر اس کے پاس اتھارٹی بھی ہو, وہ بادشاہ بھی ہو اس ملک کا, یعنی ایک تو بے رحم اوپر سے بادشاہت بھی مل گئی. ایسے انسان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے پھر ڈیل کیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے ساتھ بھی, اب وہ پتہ ہے اس سے بھی زیادہ ایسے حالات ہو رہے ہیں, تو پھر آپ کو وہ تسلی ہوتی ہے کہ صرف میں ہی اس میں نہیں ہوں, اور بھی لوگ ہیں جو اس مسئلے سے گزر رہے ہیں, یا کسی اور کے ساتھ بھی یہ ایسی بات ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب بتایا گیا تو پھر ساتھ یہ بھی پتہ ان کو یعنی ایک طرح سے اس چیز کا ریمائنڈر دیا گیا, دیکھو کئی سو سال پہلے ایک اور پیغمبر آئے تھے, وہ اللہ کے پیارے تھے, اور ان کے اوپر کیسے کیسے ٹرائلز آئے. تو دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری. هل اتاك حدیث موسیٰ, کیا آئی تمہارے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی, یا نبا بھی نہیں آیا یہاں پہ, اور کوئی اور لفظ بھی آ سکتا تھا وہ بھی نہیں, حدیث آیا. حدیث میں نے آپ کو بتایا جو نئی بات ہوتی ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بھی پتا ہو موسیٰ علیہ السلام کا, لیکن کیوں کہا گیا کہ حدیث, یعنی اب یہ ایک نئے طریقے سے بتایا جا رہا ہے, ہر دفعہ ایک نئے طریقے سے. اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قصہ ہے نا, انسان کے ذہن میں بہت پیچھے چلا جاتا ہے, بہت پیچھے چلا گیا ذہن میں, کہیں جا کے بھول بھال گیا, لیکن اب وہ رینیو ہو رہا ہے, تو ایک نئے طرح سے نئے سرے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر یہ بھی اس میں حدیث کے لفظ سے یہ بھی بات نکل سکتی ہے کہ آج اس میں سے نئی نئی باتیں, نئے نئے سبق آپ کو دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں قصہ وہی ہے جو پہلے بھی گزرا ہوگا, لیکن آج اس میں ایک نئی بات آپ کو بتاتے ہیں. اِذْ رَأَى نَارًا, یاد کرو وہ وقت جب میں نے آپ کو بتایا اِذْ کا لفظ آیا, تو پھر کیا یعنی اس کا مطلب, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تصور میں لے کر آئیں, آپ امیجن کریں کہ ایسا ہوا کہ کوئی ایسے ایک ڈیزرٹ ہے, یہ اب وہ یہاں پہ قصہ بیان ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں نا, تو یہ ابھی بالکل وہ والا ٹائم ہے جب ابھی مدین سے نکلے ہیں, 10 سال مدین میں شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے, اب اپنی بیوی کو لے کر اور جا رہے ہیں. اب جب جا رہے ہیں تو راستے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے اور سردی بہت تھی. اب اندھیرا ہو اور سردی ہو تو کیا چاہیے ہوتا ہے, لائٹ بھی چاہیے, ہیٹ بھی چاہیے, تو اس کے لیے آگ چاہیے ہوتی تھی. اسی لیے جب جا رہے ہیں اور آگ کی تلاش میں ہے کہ کہیں سے آگ مل جائے, اِذْ رَأَى نَارًا, جب اس نے دیکھا آگ کو, اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام نے کہیں ان کو نظر آئی ہے آگ, کہیں دور نظر آئی. فَقَالَ لِأَهْلِهِ, تو اس نے کہا اپنے گھر والوں سے, اپنے اہل سے, اہل میں اب کون تھا, بیوی تھی, اس کا مطلب بیوی کو بھی اہل میں شامل کیا جاتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں بعض فرقے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں صرف حضرت فاطمہ, حضرت علی اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں, تو باقی آپ کی بیویاں اہل نہیں ہیں, تو قرآن میں ہی اس چیز کا ثبوت ہے کہ بیوی بھی اہل ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ ام کسو, ٹھہرو یہاں پہ, انی آنستو نارا, بے شک میں نے, دیکھیے میں مانوس ہوا ہوں ایک آگ سے. یہ کیوں کہا کہ رائتا بھی کہہ سکتے تھے, رائتو بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے دیکھی ہے, اس کی جگہ آنستو فرمایا. مفسرین نے اس کی بہت ساری باتیں کہی ہیں, ایک تو بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک فلیش کی طرح ہوئی ہو اور پھر ختم ہو گئی ہو, اس لیے मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि मैं मानूस हुआ हूँ, मुझे कहीं ऐसे लगा है कि जैसे यहाँ पे कोई आग है। और दूसरी बात ये कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि हो सकता है सिर्फ इनको नज़र आई हो और दूसरे किसी को भी नहीं नज़र आई, क्योंकि ये तो आग नहीं थी ना, तो अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ थी और अल्लाह ताला इनको अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते थे, बुलाना चाहते थे कि आ जाएं, इसलिए वो एक शोला सा दिखाया। तो मैंने एक आग देखी है और बीवी को नहीं है कहा चलो तुम भी साथ चलो या मैं यहाँ पे बैठता हूँ, जाओ तुम लेकर आओ। इसे क्या पता चलता कि ये मर्द की जिम्मेदारी होती है कि वो फैमिली की ना नफका या उनकी कंफर्ट के लिए जो भी इंतजाम करे। यहाँ पे अपनी बीवी को जो इज्जत दी उसकी भी हमें समझ आती है कि यहाँ पे आप बैठे, आप यहाँ पे ठहरे, मैं जरा देख के आता हूँ। लाली शायद कि मैं आती कुम मिन हाबे खबसिन, मैं लाऊं तुम्हारे लिए उसमें से कोई शोला। औ अजीदु आलन नारी हुदा, या फिर मैं पाऊं आग पे कोई हिदायत। हिदायत तो मिल ही गई, राह तो मिल गई, रहनुमाई तो मिल गई। कहा उनका मकसद कहने का तो उनका ये था, उस वक्त तो नहीं उनको पता था, मकसद उनका ये कहने का था कि हो सकता है देखिए आग है वहाँ पे, अगर वहाँ से कोई शोला वगैरह ले आता हूँ फिर यहाँ पे हम आग जला लेंगे, या फिर ये भी है कि जहाँ पे आग है वहाँ पे कोई लोग वगैरह होंगे तो उन लोगों से चलो रास्ता ही पूछा हूँ कि भाई रास्ता कहाँ को। फलम्मा दाहा, फिर जब वो आए उसके पास, नू दिया या मूसा, पुकारे गए ए मूसा। जब आए किस जगह पे, उस जगह पे जहाँ पे उनको आग नजर आई थी तो वो पुकारे गए। अब यहाँ पे ये बताया गया रिवायात में, ये है वहाब बिन मुनब्बिल की मुस्नद अहमद में, उनकी तरफ से रिवायत है कि मूसा अलैहिस्सलाम उस आग की तरफ चले और उसके करीब पहुँचे तो उसमें अजीब हैरत अंगेज मंजर देखा कि एक बड़ी आग है जो एक हरे भरे दरख्त के ऊपर शोले मार रही, मगर हैरत ये है कि उस दरख्त की कोई शाख या पत्ता जला हुआ नहीं है और ना जल रहा, वरना बर्न हो जाए ना, बल्कि आग ने दरख्त को तरी और ताजगी और उसकी रौनक में और इजाफा कर दिया। ये हैरत अंगेज मंजर कुछ देर तक देखते रहे इस इंतजार में कि शायद कोई चिंगारी आग की जमीन पे गिरे तो उठा ले। जब देर तक ऐसा नहीं हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने घास वगैरह के कुछ तिनके जमा करके उस आग के करीब किए कि उनमें आग लग जाए तो उनका काम बन जाए, मगर जब ये घास फूस भी आग के करीब गई तो आग पीछे हट गई। और बाद रिवायत में कि आग उनकी तरफ बढ़ी है, घबरा के पीछे हट गए। बहरहाल आग हासिल करने का मतलब पूरा नहीं हुआ उनका। अब ये हैरत के अंदाज में थे कि इन एक गैबी आवाज आई, नू दिया या मूसा, पुकारे गए ए मूसा। इसका मतलब है कोई ऐसा है जो के नाम भी जानता है और जो पहले से इंतजार कर रहा है, यानी किसी ने नाम से पुकारा है और ऐसे ही जैसे कि आप कहीं जाएं तो आपको कोई आगे बढ़ के आपका नाम ले, ऐसे नहीं लगता कि इंतजार कर रहा था कोई, पहले से इंतजार में था कि ए मूसा इन्नी अना रब्बुका, बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ। यानी ये ना समझना कि पता नहीं कोई कहाँ से आवाज आ रही है, कोई हवाई मखलूक है, कोई जिन्नात है या कोई इंसान, ऐसे ही सोचता है ना वीरानी के अंदर। नहीं है मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ। और रोल मानी में कि इस आवाज को वो हर तरफ से सुन रहे थे, हर तरफ से आ रही थी, कोई पता नहीं चल रहा था कि कौन सी डायरेक्शन है इसकी। और एक मोजा ही था ना, और वो जिस चीज को आग समझ रहे हैं वो आग नहीं है, वो कुछ और है, और उसमें से आवाज आ रही है कि मूसा मैं तेरा रब। अब देखें ये भी चीज है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये यकीन किस तरह हुआ कि वाकई अल्लाह की आवाज है, तो अल्लाह ताला ने उनके दिल को इस पर मुतमईन कर लिया कि वो यकीन कर ले। अल्लाह का पूरा पावर, पूरी कुदरत है ना। और दूसरे ये आग के हैरत अंगेज मंजर को देख के भी, ये तो कोई और नहीं कर सकता। और आ, आ आवाज भी कोई आम लोगों की आवाज नहीं थी, एक डायरेक्शन से आ रही हो। अच्छा अब देखें, जब अल्लाह ताला ने अपना तारुफ फरमाया तो अनल्लाह नहीं कहा बल्कि अना रब्बू का कहा। रब, रब के अंदर सब कुछ आ गया। और रब इतना जबरदस्त लफ्ज है कि इसके अंदर मालिक होना, मैं तुम्हारा मालिक हूं, जिसने तुम्हें पैदा किया मैं वो हूँ, जिसने तुम्हारी आज तक हिफाजत की मैं वो हूँ, जिसने तुम्हें पाला मैं वो हूँ, जिसने तुम्हें बढ़ाया ग्रो कर किया मैं वो हूँ, जिसने तुम्हें रिस्क दिया मैं वो हूँ, जिसने जगह जगह पे तुम्हारी निगेबानी की मैं वो हूँ। जब तुम वहां पे गए थे और बेसरो सामानी की हालत में मदीन में बैठे हुए थे कि कहाँ जाऊं, तो उस वक्त जो तुम्हें जॉब का इंतजाम किया, शादी का इंतजाम किया, जो सारे इंतजाम किए वो मैं हूँ। यानी इसमें सब चीजें आ जाती हैं। रबूबियत में मालिक होना, इंतजाम करना, ज्यादा करना, बढ़ाना, किसी की परवरिश करना, किसी की नशो नुमा करना, किसी की हिफाजत करना, जितनी उसकी मेंटेनेंस, सस्टेनेंस के, सर्वाइवल के जितने इंतजाम है वो सब इसमें। तो जब रब कह दिया जो, तो सब बातें इसके अंदर आ गई कि आज तक जो कुछ तुम्हारे लिए किया वो जिसने किया मैं वो हूं। समझे? तो अल्लाह ताला ने बता दिया है मूसा, तुम तो मुझे जानो या ना जानो, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। तो जिसने पैदा किया सारा हक ही उसका हो गया। फखलाना अलैक, तो अपने जूते उतार दो। सबसे पहली बात क्या आई? जूतों के उतारने की। अब देखें जूतों के उतारने का यहाँ पे क्यों जिक्र आया? कहा जाता है, उलमा कहते हैं कि ये भी एक अदब है, इल्म लेने से पहले अदब सिखाया गया। और दूसरी कुछ और भी रिवायात आती हैं कि हो सकता है ये भी बात है कि आपके कदम इस मुबारक वादी की मिट्टी से लग के उसे बरकत हासिल करें। तो बाज़ ने कहा कि ये खुशू की और तवाज़ो की एक सूरत है कि इंसान जो है ना जूते उतार के फिर खड़ा हो सामने। तो ये यानी उनको पहली बात जो कही गई, पहला अदब, एक एटिकेट्स भी होते हैं ना इल्म लेने के। अल्लाह ताला इल्म देने वाले हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, और इल्म लेने के लिए उसके एटिकेट्स होना बहुत ज़रूरी, उसके आदाब होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम ना सीखते हैं और ना ही शायद हमें सीखने की ज़रूरत है कि कोई अदब भी होता है इल्म लेने का। बस जैसे हैं, जिस हालत में हैं वैसे ही बैठ गए इल्म लेने के लिए, चाहे कंघी हुई है या नहीं है, चाहे मुँह धुला कि नहीं मुँह धुला, चाहे कुछ भी हुआ, बस इल्म लेने बैठे हैं हम, कुरान पढ़ने, कैसी भी हालत में। देखिए जब जब इंसान इल्म के लिए एहतमाम करता है ना, ये इस तरह इसके अदब के मुताबिक चलता है, तो वो जो जो उसे जज़ब करना होता है ना, वो भी उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इन्नक बिल वादिल मुकद्दसी तुआ, बेशक तुम तुआ की वादी में हो, जो मुकद्दस वादी में। और ये भी बता दिया गया आप इस वादी में हैं। और ये भी यहाँ से पता चलता है कि हर जगह का अपना एहतराम होता है। ऐसा ना, आप काबा गए हैं तो उसका अपना एहतराम है, आप बाकी ज़मीन पे होंगे वो चीज़ें नहीं करेंगे जो वहाँ होंगी, क्योंकि हर जगह की अपनी एक तज़ीम है, एहतराम है। वह अनख्तार तू का, और मैंने चुन लिया तुझको, फस्ता में लली माँ यो हा, तो बस गौर से सुनो वास्ते उसकी जो वही किया था। ये अब नबूवत मिल गई ना, अल्लाह ताला ने फरमा दिया मैंने तुम्हें चुन लिया, किस चीज़ के लिए चुन लिया? कि तुम अब मेरा पैगाम लेके आगे पहुंचाओगे। यानी जिसको अल्लाह चुन लेता है वही उसका पैगाम आगे पहुंचाता है। इसके लिए यानी अल्लाह ताला चुनाव करता है बंदों में से, और पैगंबर जो होते हैं वो तो फिर आपको पता है कि पहले से ही चुने हुए होते हैं, वो मेहनतों से पैगंबर नहीं कोई बनता, अल्लाह ताला ने पहले ही चुना होता है उनको। और यहाँ पे फरमाया फस्तमे लीमा यूहा, और से सुनो जो वही की जाती है आपकी तरफ। इससे पता चलता है जब वही के सुनने का वक्त आए तो इंसान को फजूल बातों से, इधर उधर ध्यान लगाने से, टेक्स्टिंग से, दूसरी चीज़ों में मशगूल होने से बचना चाहिए। ये वही को सुनने के आदाब में से है और गौर से सुनना चाहिए। देखिए ना, आप मसलन आप अपने बच्चे से बात कर रही हैं और बच्चा वो कभी टेक्स्टिंग कर रहा है, कभी सर खुजा रहा है, कभी उधर उधर देख रहा है, दीवारों पे देख रहा है, तो आप कहते हैं ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको ये बदतमीजी है। कहते हैं ना, ये बदतमीजी है कि अगर तुम इस तरह से कर रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम उधर देख रहे हो और तुम अपने टेक्स्ट चेक कर रहे हो। अब मुझे बताएं, अल्लाह आपसे बात कर रहा है कुरान में और आप इधर चैटिंग में लगे हुए, उधर चलो मैं अपना वो उतनी देर चलो ये कुरान की आयतें ही चल रही हैं ना, समझा रही हैं तो मुझे पहले ही समझ है, मैं उतनी देर अपनी ये चीज़ें चेक कर लूँ, ज़रा ईमेल चेक कर लेती हैं। कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, अल्लाह ताला बात कर रहा है। चाहे तफसीर की क्लास हो, चाहे तर्जुमे की क्लास हो, चाहे कुरान की क्लास हो, दूसरी पढ़ने की क्लास हो, ये अल्लाह का कलाम है जो सीखा और समझा जा रहा है। ये एटिकेट्स हमें सीखने, ये भी अदब है इल्म लेने का। जहन भी मुतवज्जे हो, खामोश भी हो, आप फोन ये सब चीजें टेक्स्ट वगैरह बंद कर दे। ये सबक पहला सबक था जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिया और हम कब से पढ़ रहे हैं और हमें ये चीजें नहीं है। तो इल्म बाद में है, अदब पहले आया, ठीक है। पहले अदब सीखोगे तो इल्म लोगे, अगर अदब ही नहीं होगा इल्म लेने का, क्या इल्म आएगा फिर तुम्हारे पास। उनको भी पहले अदब बताया गया, कैसे आपने यहाँ पे खड़े होना है जूते उतार के, कैसे आपने बात को सुनना है, बहुत गौर से हमने आपको चुन लिया, आपको हमने अब एक फॉर्मल अल्लाह ताला की तरफ से एक सर्टिफिकेट हो गया कि जो है ना आप नबी हैं।